नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार अभियान में तेजी। प्रधानमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में चुनाव रैली करेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम महाराष्ट्र में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली की अदालत ने आबकारी नीति घोटाले में बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका खारिज की। सोने के भाव अब तक के सर्वोच्च स्तर पर, 10 ग्राम सोना 71,000 रूपये का हुआ। उत्तरी अमरीका में आज पूर्ण सूर्य ग्रहण देखा जा सकेगा और आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई सुपर किंग्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। दोपहर समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार में तेजी आ गई है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में जनसभा को संबोधित करेंगे। श्री मोदी बस्तर के भानपुरी में विजय संकल्प शंखनाद रैली को संबोधित करते हुए भाजपा के चुनाव प्रचार की शुरूआत करेंगे। पहले चरण के अंतर्गत बस्तर लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल को मतदान होगा। प्रधानमंत्री का आज शाम महाराष्ट्र के चंद्रपुर और गढ़चिरौली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार का भी कार्यक्रम है। मोरवा एयरपोर्ट ग्राउंड में आयोजित जनसभा में प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता और महायुति गठबंधन के नेता उपस्थित रहेंगे। राज्य के वन मंत्री सुधीर मुंगटीवार चंद्रपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से और मौजूदा सांसद अशोक नेते गढ़चिरौली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार हैं। कांग्रेस ने चंद्रपुर से पूर्व सांसद बालू धानोरकर की पत्नी प्रतिभा धानोरकर को उम्मीदवार बनाया है। डॉ नामदेव किरसन गढ़चिरौली सीट से कांग्रेस प्रत्याशी हैं। पूर्वी विदर्भ के 5 निर्वाचन क्षेत्रों नागपुर, रामटेक, हंद्रापुर, गढ़चिरौली चिमूर और भंडारा गोडिया में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा। असम में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के प्रचार में तेजी आ रही है। इस चरण में 5 लोकसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। केंद्रीय गृहमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह कल डिब्रूगढ़, लखीमपुर और सोनितपुर में जनसभाएं करेंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी चुनावी रैलियां कर रहे हैं। कांग्रेस की ओर से प्रदेश अध्यक्ष भूपेन बोरा, राष्ट्रीय महासचिव जितेंद्र सिंह और सांसद गौरव गोगोई जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी आज डिब्रूगढ़ में चुनाव रैलियां करेंगी। असम में दूसरे चरण के चुनाव के लिए नाम वापसी का आज अंतिम दिन है। इस चरण में 5 संसदीय सीटों के लिए 26 अप्रैल को मतदान होगा। लोकसभा चुनाव के लिए देश के प्रमुख संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की श्रृंखला में आज जानकारी तमिलनाडु की कन्याकुमारी लोकसभा सीट की। इस निर्वाचन क्षेत्र में 15,47,378 मतदाता हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके अंतर्गत 6 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र कन्याकुमारी, नागरकोइल, कोलचेल, पद्मनाभपुरम, किल्लियोर और विल्वनकोड आते हैं।
कन्याकुमारी के 6 विधानसभा क्षेत्रों में से 4 डीएमके और कांग्रेस गठबंधन ने जीते थे, जबकि अन्य 2 सीटों पर भाजपा और एआईएडीएमके गठबंधन के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी। इस बार एआईएडीएमके और भाजपा में गठबंधन नहीं होने से मुकाबला त्रिकोणीय होने की उम्मीद है। 22 उम्मीदवारों में से मुख्य मुकाबला पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री पी राधाकृष्णन, कांग्रेस के मौजूदा सांसद विजय वसंत और फिल्म निर्माता तथा एआईएडीएमके नेता एन पासिलियन के बीच है। इस लोकसभा क्षेत्र में सांसद वसंत कुमार के निधन के बाद 2021 में हुए उपचुनाव में उनके बेटे विजय वसंत ने पी राधाकृष्णन को पराजित किया। 72 वर्षीय श्री राधाकृष्णन 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। नागरकोइल निर्वाचन क्षेत्र के विभाजन से पहले वह लंबे समय तक इस सीट पर भाजपा के उम्मीदवार थे। उन्होंने 1991 से इस सीट पर 7 बार चुनाव लड़ा था। जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सकलैन अख्तर।
जम्मू से हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 12 अप्रैल को जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कठुआ में 10 अप्रैल को पार्टी उम्मीदवारों के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे।
कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के भी अगले सप्ताह जम्मू डिवीजन में अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में रैली को संबोधित करने का कार्यक्रम है। उधमपुर और जम्मू लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल तथा 26 अप्रैल को मतदान होगा। उधमपुर से भारतीय जनता पार्टी की ओर से 2 बार के सांसद तथा केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला कांग्रेस के चौधरी लाल सिंह से है। जम्मू में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर जुगल किशोर शर्मा को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस ने कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला को चुनाव मैदान में उतारा है। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल।
कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर देश को धार्मिक आधार पर बांटने का आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के समय अपने 10 वर्ष के शासन की रिपोर्ट कार्ड पेश करने के बदले विभिन्न समुदाय के बीच दरार डाल रही है। इस बीच भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि यह कांग्रेस का घोषणा पत्र है या मुस्लिम लीग का। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नाम वापस लेने का आज अंतिम दिन है। इस चरण में 12 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होगा। इसमें बाहरी मणिपुर निर्वाचन क्षेत्र के कुछ हिस्से भी शामिल हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं।
लोक निर्णय 2024
आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम
हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर।
चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर,
विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण,
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए
लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024।
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने भारत राष्ट्र समिति बीआरएस की नेता के कविता की अंतरिम जमानत याचिका नामंजूर कर दी है। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित आबकारी नीति घोटाले के सिलसिले में के कविता को गिरफ्तार किया था। विशेष सीबीआई अदालत की न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने जमानत नामंजूर की। कविता ने अपने पुत्र की परीक्षा के लिए आवश्यक नैतिक और भावनात्मक सहयोग का हवाला देते हुए जमानत की अपील की थी। के कविता को 15 मार्च को उनके हैदराबाद आवास से गिरफ्तार किया गया था। तीनों सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाने और एकीकरण से संबंधित सुधार पहल और नए विचारों पर चर्चा के लिए तीनों सेनाओं का सम्मेलन परिवर्तन चिंतन नई दिल्ली में जारी है। सम्मेलन की अध्यक्षता प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान कर रहे हैं। तीनों सेनाओं के संस्थान प्रमुखों, सैन्य विभाग, एकीकृत रक्षा स्टाफ और सेना मुख्यालयों का ये अब तक का पहला सम्मेलन है। विचार विमर्श के दौरान विभिन्न रक्षा सेवाओं से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ एकीकरण के संबंध में अपने सुझाव दे रहे हैं। सोने और चांदी की कीमतें आज शुरुआती कारोबार में अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गईं। सोने का भाव 440 रुपये की उछाल के साथ 71,080 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। वहीं चांदी की कीमत भी 1076 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 82,064 रुपये प्रति किलो हो गई। कीमतों में ये उछाल डॉलर सूचकांक में गिरावट के कारण आया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार का कार्यकाल असाधारण रहा है और इस दौरान पिछले 10 वर्ष में देश में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ। श्री ठाकुर ने आज सुबह चेन्नई हवाई अड्डे पर मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए शासन में लागू योजनाओं से समाज के सभी वर्गों के लोगों को फायदा हुआ है और आर्थिक वृद्धि उच्च स्तर पर है।
People want to vote for Modi. If you look at each and every state in the country today, good governance and development model, the country has progressed from 10th largest economy to the 5th largest economy. The highest ever FDI in the last so many years. If you compare the FDI in the last 60 years and the FDI in the last 10 years, you could see how the country is progressing and how the world is believing in the progress and growth of India.
दिल्ली विधानसभा में आज भारतीय जनता पार्टी के 6 विधायकों को उनके खराब व्यवहार के लिए मार्शल द्वारा सदन से बाहर कर दिया गया। सदन में चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता रामवीर सिंह विधूड़ी ने दिल्ली जल बोर्ड में हुए कथित भ्रष्टाचार का मामला उठाने की कोशिश की, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने इसकी अनुमति नहीं दी। भाजपा विधायकों ने सदन के बीचोंबीच आकर आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ नारे लगाए। अध्यक्ष ने बार बार सदन में व्यवस्था बनाए रखने की अपील की, लेकिन विपक्ष का विरोध जारी रहा। बाद में अध्यक्ष ने मार्शल से इन विधायकों को सदन से हटाने के लिए कहा। भाजपा विधायकों ने सदन के बाहर भी विरोध प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और मौजूदा भाजपा सरकार पर चुनावी बॉन्ड के नाम पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि जिन कंपनियों ने भाजपा को चंदा दिया उन्हें कर में छूट दी गई। श्री सिंह ने आरोप लगाया कि पिछले 7 वर्षों में 1,00,000 करोड़ रुपए के घाटे के बावजूद 33 कंपनियों ने भाजपा को 450 करोड़ रुपए दान में दिए। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से आज रात प्रसारित होने वाले साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक का विषय है आम जनता के लिए उपलब्ध पेंशन विकल्प। वित्त और आर्थिक विशेषज्ञ बलवंत जैन और शरद कोहली श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न पेंशन विकल्पों और उन्हें चुनने के बारे में प्रश्न पूछे जा सकेंगे। ये कार्यक्रम रात 9:30 बजे से आकाशवाणी के एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित होगा। श्रोता टेलीफोन नंबर 0112342105 और 0112331444 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तरी अमेरिका में आज एक दुर्लभ खगोलीय घटना में पूर्ण सूर्य ग्रहण देखा जा सकेगा। इसे प्रशांत महासागर से लेकर मैक्सिको, अमेरिका और कनाडा में देखा जा सकेगा। भारतीय समय के अनुसार सूर्य ग्रहण रात 9:12 पर शुरू होकर तड़के 2:22 पर समाप्त होगा। हालांकि लोग इस खगोलीय घटना को भारत में नहीं देख सकेंगे। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच आज शाम 7:30 बजे चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी ने अपने शैक्षणिक सामग्री के कॉपीराइट उल्लंघन मामले में चेतावनी जारी की है। इसमें कहा गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति या संस्था कॉपीराइट अनुमति के बिना एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों की सामग्री का व्यावसायिक उपयोग के लिए प्रकाशन करती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। एक रिपोर्ट।
एनसीईआरटी ने लोगों से ऐसी पाठ्य पुस्तकों या कार्य पुस्तिकाओं का उपयोग न करने का आग्रह किया है और कहा है कि उनमें दी गई सामग्री तथ्यात्मक रूप से गलत हो सकती है। यह भी सलाह दी गई है कि यदि किसी व्यक्ति को ऐसी पायरेटेड पाठ्य पुस्तकें या कार्य पुस्तिकाएं मिलती हैं तो एनसीईआरटी को ईमेल pd.ncert.nic.in के माध्यम से तुरंत प्रश्न भेजे जा सकते हैं। यह कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे यूट्यूब चैनल newsonair ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। समाचार कक्ष से अभिषेक कपिल।
दिल्ली शिक्षा निदेशालय राजधानी के सरकारी विद्यालयों में शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए कक्षा 6 से 9 में दाखिले की ऑनलाइन प्रक्रिया आज से शुरू करेगा। दाखिले के लिए शिक्षा निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार अभियान में तेजी। प्रधानमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में चुनाव रैली कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आज शाम महाराष्ट्र में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली की अदालत ने आबकारी नीति घोटाले में वीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका खारिज की। सोने के भाव अब तक के सर्वोच्च स्तर पर, 10 ग्राम सोना 71,000 रूपये का हुआ। उत्तरी अमेरिका में आज पूर्ण सूर्य ग्रहण देखा जा सकेगा और आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई सुपर किंग्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।